اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اس خالق یکتا کے نام سے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے. گھرانہ کے ناظرین کی خدمت میں شبنم زیدی کا پرخلوص عرض ادب اور سلام. آپ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, اپنے پروگرام کا آغاز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خوبصورت کلام سے کرتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چار ایسے وقت ہیں کہ جب خدا کی رحمتوں کا در اپنے بندوں کی جانب کھل جاتا ہے. وہ کون سے وقت ہیں؟ اس وقت کہ جب بارش کا نزول ہوتا ہے, اس وقت جب بیٹا محبت بھری نظروں سے اپنے باپ کے چہرے کی طرف نگاہ کرتا ہے, اس وقت جب خانہ کعبہ کا در کھولا جاتا ہے, اور اس وقت جب دو نوجوان شادی کے حسین رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں. ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو گھرانہ میں خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ اسلام میں ازدواج کی کیا اہمیت ہے. بے شک ازدواج, شادی, نکاح وہ خوبصورت اور حسین رشتہ ہے, وہ اٹوٹ بندھن ہے جسے خداوند متعال نے اپنی مخلوقات کے درمیان رائج کر دیا ہے تاکہ انسان ایک دوسرے سے زیادہ انس اور قربت حاصل کر سکے. ناظرین, اس لیے کہ انسان وہ معاشرتی مخلوق ہے کہ جو تنہا زندگی نہیں گزار سکتا, بلکہ اسے زندگی گزارنے کے لیے, اسے آگے بڑھنے کے لیے ایک ساتھی اور ایک ہمدم کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا خداوند متعال نے اس حسین رشتے کو قائم کر کے جہاں ایک طرف انسان کی تنہائی کو مٹا دیا, انسان کو تنہائی سے نجات دلائی ہے, وہیں پر نسل بشریت کو دوام بخشا ہے اور انسان کے گناہوں کی طرف بڑھنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ جس نے ازدواج کر لیا, جس نے شادی کر لی, گویا اس کا نصف ایمان محفوظ ہو گیا, اور خدا کے نزدیک شادی اور نکاح اور ازدواج سے زیادہ عزیز اور محبوب ترین کوئی قانون نہیں ہے. تو آئیے ناظرین, اسی خوبصورت موضوع پر گفتگو کرتے ہیں, اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئی ہیں محترمہ بلند اقبال صاحبہ. آئیے انہیں سلام کرتے ہیں, اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم محترمہ بلند اقبال صاحبہ.
وعلیکم السلام.
آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو اس پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں.
جی, جیسے کہ ہماری آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے, اسلام میں ازدواج کی کیا اہمیت ہے, تو سب سے پہلے میں آپ سے جو سوال کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہم اکثر کہتے ہیں جو میاں بیوی کی جو زندگی گزرتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ازدواجی زندگی, ان کی کس طرح سے گزر رہی ہے, اور تو خود یہ کلمہ ازدواج جو ہے اس کا کیا معنی ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں جو ازدواج کا لفظ آیا ہے اس کا کیا معنی ہے, اس سے مراد کیا ہے, اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ توضیح دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. گفتگو کا آغاز خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں کہ جو مالک و خالق و رب کائنات ہے.
جی, بے شک.
ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ خود ازدواج سے کیا مراد ہے, تو اس ازدواج کی اس لفظ کو اور اس رشتے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابتدا میں جانا ہوگا. سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ یہ جو لفظ ازدواج ہے یہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, خود اس لفظ کا کیا مطلب ہے. ازدواج کا جو اصلی مادہ ہے, اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ زواجہ ہیں, اور لغت میں جو زواجات سے جو مراد لی جاتی ہے یا اس کا جو معنی ملتا ہے, اس کا مراد یہ ہے کہ دو چیزیں جو مقابل ایک دوسرے کے مقابل ہیں, یعنی دو چیزوں کا ایک جوڑا بننا جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں, وہ اپنی اپنی خصوصیات رکھتے ہیں. مثلا ایک چیز جو اثر دے رہی ہے اور ایک دوسری چیز جو اس اثر کو قبول کر رہی ہے اور اس اثر کو ظاہر بھی کر رہی ہے, یعنی ان دونوں کے ایک کا اثر دینا اور دوسرے کا اثر قبول کر کے اس اثر کو ظاہر کرنے کا نام ازدواج ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے بعض جگہوں پر کہ ازدواج سے مراد یعنی دو چیزیں جو مل رہی ہیں, ایک جو ہے وہ منفی طاقت رکھتی ہے اور ایک مثبت طاقت رکھتی ہے, اس کا ان دونوں کے ملاپ کا نام بھی ازدواج ہے. اور تیسرا کیا؟ تیسرا یہ کہ ملاپ, ملنا, मुरक्कब होना, दो चीजों का आपस में मिलके एक बन जाना, एक जोड़ा बन जाना, इसको इज्दवाज कहा जाता है। जैसा कि खुद खुदाए मुताल कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि वमिन कुल शैन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, यानी खुदा ताला ने हर चीज को इस कायनात इस जहान में आप जो भी चीज देख लें, हर चीज को दो दो की शक्ल में, जोड़े की शक्ल में खल्क किया है, पेयर बनाया है। किस लिए? इसलिए कि ताकि हम लोग, शायद हम लोग मुतज़क्कर हो जाएं, तज़क्कुर करें, उसके बारे में सोचें, फिक्र करें। तो खुदा ताला ने अपने कलाम में कितना खूबसूरत इरशाद फरमाया कि हर चीज को दो की शक्ल में खल्क किया है।
मोहतरमा बुलंद अकबर साहबा, यहीं पे मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहती हूँ कि अभी जो आपने कुरान की आयत की तिलावत की है, कुल्लो शैइन यानी हर चीज को खुदावंदे मुताल ने जो है वो दो दो करके खल्क किया है, तो यहाँ हर कुल्लो शैइन यानी हर चीज से क्या मुराद है और क्या वजह थी कि खुदा ने हर चीज को दो चीजों, मसलन दो जुफ्त में खल्क किया, यानी दो चीजें खल्क की हैं?
जी जरूर, कुल्लो शैइन अगर हम देखते हैं तो इसमें सिर्फ इंसान नहीं आ जाता, कलाम खुदा है और कलाम खुदा में यानी कुल्लो शैन यानी हर चीज। अब देखते हैं कि इस दुनिया में कितनी खुदा ताला ने मखलूकात को खल्क किया है। देखा जाता है कि इंसान के अलावा हैवानात भी हैं, नबतात यानी पौधे भी हैं, जमादात भी हैं, और उनके इसके अलावा इंसान, यानी चार चीजें, चार मखलूकात हैं। अब जब खुदा ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कुल्लो शैन, तो यानी इन चारों चीजों, चारों मखलूकात को दो की शक्ल में खल्क किया है, हर चीज यानी दो, एक जोड़े की शक्ल में, यानी दो चीजों का मिला।
इंसान जो है वो जोड़े की शक्ल में नहीं है बल्कि इस कायनात की जितनी भी चीजें हैं वो खुदा ने जोड़े की शक्ल में खल्क की
है। बिल्कुल सही। और अगर और लुत्फ वाली जो बात है वो ये है कि खुदा ताला ने ना सिर्फ इनको जोड़ा खल्क किया है, दो दो चीजें बनाई हैं, बल्कि इनके दरमियान मोहब्बत, रहमत और एक मवद्दत का रिश्ता भी कायम किया है और अट्रैक्शन बनाई है हर चीज में, खल किया, जोड़ा बनाया और इनके दरमियान अट्रैक्शन का रिश्ता कायम किया। क्यों? इसलिए कि एक तरफ तो निजाम इलाही चलता रहे खास कवानीन के तहत, और दूसरी तरफ क्या, दूसरी तरफ वो सारी मखलूकात अपनी इस जिंदगी को खुशी के साथ और लज्जत के साथ गुजार सकें। अब आते हैं आयत की तरफ कि खुदा ताला ने हर चीज को दो खल किया, हर चीज से क्या मुराद है? सिर्फ ये नबतात नहीं, ये मिलाप, ये मुरक्कब होना, ये एक दूसरे के साथ मिलना, ये खुदा ताला की रहमत और खास इनायत है कि उसने इसको हर चीज को दो तरह खल्क किया है। मिसाल के तौर पर अगर हम जमादात की मिसाल लेते हैं, आप देखें कि दो अनासिर मसलन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो एक तीसरा अंसर पैदा होता है। वो तीसरा अंसर क्या है? वो तीसरा अंसर माया हयात है, पानी का है। अब वो पानी ऐसा पानी कि जिसके बगैर जिंदगी नामुकम्मल है, जिसके बगैर जिंदगी की ही नहीं जा सकती। इसके अलावा आप देखें कि जमीन में खाक, मट्टी और पत्थर के मिलाप से, और इसी तरह उस मट्टी और पत्थरों के साथ दूसरे मवाद के मिलाप से, इन दोनों की तरकीब से हमारे पास कितने ग्राम बहा अतीक और अकीक हैं। आप देखें फिरोजा है और हीरे जैसे कीमती पत्थर हमें हासिल होते हैं। ये क्या है? ये इन दो चीजों की तरकीब, इन दो अनासिर की तरकीब और मिलाप से, इनकी तजवीज से, इनके इज्दवाज करने से हमें ये गिरांबहा चीजें मिलती हैं। और ये सब किस लिए हैं? ये इंसान की बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए, ये इंसान की मनफात और फायदे के लिए हैं ये सब चीजें। बिल्कुल इसी तरह अब आप पौधों की तरफ आए तो पौधों में भी ऐसी हैरत अंगेज तरह का मिलाप होता है कि जिसके नतीजे में इंसान को फायदा मिलता है। अब हैवानात की तरफ आए और अगर हम हैवानात में इज्दवाज के इस रिश्ते को अगर गौर करें तो वाकई हम लोग हैरत के समंदर में गर्क हो जाएंगे कि खुदा ताला की मसलहत और खुदा ताला की खलकत और कुदरत कितनी ज्यादा है कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और रही बात हिकमत इलाही की, हिकमत इलाही क्या है? सबसे पहले तो वहदानियत खुदा कि जो वाहिदियत और जो अहदियत है, जो वाहिद होना है, अहद होना है, सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात को जेबा है। अगर कोई एक चीज एक है वो सिर्फ खुदा की जात है इस जहान में, और इस जहान से मावरा सिर्फ एक चीज वो खुदा की जात है। देखिए आप जरा गौर करें, आसमान के साथ अगर जोड़ा बनाया गया है तो जमीन को बनाया गया है, सूरज के साथ चांद को बनाया गया है, इसी तरह तारीकी के साथ रोशनी को बनाया गया है, ये जोड़े हैं। देखिए इनकी मस्बत और मनफी ताकतें आपस में हैं। और दूसरी बात, दूसरी हिकमत इलाही क्या है? हिकमत इलाही दूसरी ये है कि ये जो दो चीजों को जोड़ा बनाया गया, एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है। एक है तो दूसरा भी नहीं है। अगर एक की कदर हो रही है तो दूसरे की वजह से हो रही है। मसलन अगर आसमान ना हो तो हमें जमीन का पता ही ना चले। जमीन को हम इसलिए जानते हैं कि इसके मुकाबले इसकी जिद में आसमान है। इसी तरह सूरज चांद जो चांद है, इसी तरह आप देख लें इंसान के अंदर भी दो ताकतें रखने वाली चीज है। क्या एक उसका नफ्स है जो जाहिरी, और एक इसकी रूह है। जब इन दोनों का आपस में मिलाप होता है, तजवीज होती है, तो एक इंसान कामिल सामने आता है, एक तीसरा इंसान, एक तीसरी चीज सामने आती है इंसान कामिल की शक्ल में। इसीलिए इंसान की जो तजवीज है उसको इतनी ज्यादा अहमियत दी गई है। आयात में भी उसकी अहमियत है, रिवायात में भी उसकी अहमियत है, और अहदीस में भी है। जिस तरह के
मोहतरमा बुलंद गोपाल साहिबा, अपनी हम गुफ्तगू को भी आगे जारी रखते हैं, मगर हम पहले छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, हमारी इस खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज खत्म नहीं हुआ, अभी हमारी इस खूबसूरत गुफ्तगू जारी रहेगी। आते हैं, मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक बार फिर आपको घराना में वेलकम करती हूँ। तो मोहतरमा बुलंद इकबाल साहिबा, आप बयान कर रही थी कि खुदा ने हर मखलूक को जो है वो जुफ्त खल्क किया है, हर मखलूक को जो है वो दो चीज़ों के साथ, मसलन अकेला तनहा खल्क नहीं किया है। और जिस तरह से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि नबातात, हैवानात और जमादात को भी खुदा ने जो है वो जुफ्त खल्क किया है, तो इसके आगे आप क्या कहना चाहेंगी?
इंसान चूंकि अशरफुल मखलूकात है, इसलिए इस रिश्ते, इस दवाज को उसकी जिंदगी में बहुत अहमियत हासिल है, जिसकी जिसके वाज़ह निशानियां हमें अहादीस में मिलती हैं और आयात में भी मिलती हैं। जैसे रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि मन कान लहू मा यतज़व्वजा बिही फलम यतज़व्वजा फलैसा मिन्ना। रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि अगर किसी के पास इस दवाज करने के इम्कान मौजूद है फिर भी वो इज्तिवाज नहीं करता, बस वो हमसे नहीं है। आप इसकी अहमियत का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि रसूल खुदा खुद फरमा रहे हैं कि वो हमसे नहीं है। तो इसकी और जैसे अभी आपने स्टार्ट में बताया था कि जिसने इज्तिवाज की उसने अपने आधे दीन को पा लिया, और बाकी का आधा दीन, बाकी का आधा दीन रसूल खुदा की ही हदीस में है कि बाकी का आधा दीन उस वक्त उसको मिलेगा जब वो तकवा इलाही इख्तियार करेगा। अब तकवा इलाही कैसे इख्तियार करेगा? जब वो अपने अंदर वो खसूसियात पैदा करेगा, वो चीजें, वो तकवा इलाही यानी वो तमाम खसूसियात जो एक इंसान कामिल में होनी चाहिए, जब वो उसको पैदा करेगा तो वो अपने दीन को कामिल कर लेगा। तो इसलिए इज्तिवाज का होना इंतहाई जरूरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए अहमियत के लिहाज से, तो इज्तिवाज की अहमियत देखा जाए तो माशरती लिहाज से भी इज्तमा में, माशरे में एक शादीशुदा इंसान की जो अहमियत और कदर और कीमत है वो गैर शादीशुदा की नहीं है, होगी लेकिन बढ़ जाती है, और खुदा की नजर में भी उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इबादत के सिलसिले में भी एक शादीशुदा मर्द या औरत जो भी है, एक इंसान दो रकत नमाज जब पढ़ता है उसका जो सवाब है और अज्र है वो गैर शादीशुदा की 70 रकत के बराबर है। और सबसे अहम और सबसे जो जान कहें इस इज्तिवाज की, वो ये है कि इस इज्तिवाज के रिश्ते में मुंसलिक होने के बाद इंसान अपने अव्वली और आखिरी जो मकसद हयात है तकर्रुब इलाही उसके नजदीक हो जाता है और उसको पा लेता है। और वह तकर्रुब इलाही जब ही हासिल होगा कि जब इंसान अहकाम इलाही को सही तौर पर अपनी जिंदगी में प्यादे करेगा या अपनी जिंदगी में अमल करेगा, उसको जब जाके उसको तकर्रुब इलाही मिल सकेगा।
मोहतरमा बुलंद इकबाल साहब, अभी आपने इतनी आयात की और रिवायात की जो है हमारे नाज़रीन के सामने तिलावत की और बताया कि इस्लाम में किस कदर इज्तिवाज को अहमियत दी गई है, तो इस्लाम में जो इस अहमियत इज्तिवाज को दी गई है तो इसका हदफ क्या है, इसका नतीजा क्या है इस इज्तिवाज का?
अब हदफ की बात कर रही हैं तो अगर मैं किसी से सवाल करूं या किसी से भी पूछा जाए कि आप शादी क्यों करते हैं या आप इस किसी एक अपने हमसर के या अपने एक साथी की तलाश में क्यों निकलते हैं, तो सबसे पहला जवाब तो उसका मामूलन यही मिलता है कि फिजिकल डिमांड होती है हर इंसान की। जब वो इस काबिल होता है, उसको उसकी फिजिकल डिमांड जब ये मिलती है उसको, तो वो उसको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक इंसान की, अपने एक साथी की जरूरत होती है, अपने ही जैसे कि मतलब इंसान को इंसान की जरूरत है, हैवान को हैवान की जरूरत है, इसी तरह ही पौधों और जमादात में, तो वो उसकी तरफ जाता है। और अगर दूसरी माशर्ती हवाले से अगर इस जवाज की हदफ की बात की उनसे पूछी जाए, तो देखा जाए तो इंसान को इस माशरे में रहने के लिए अपनी हिमायत और अपने दिफा की जरूरत होती है। उसको जरूरत होती है कि कोई एक ऐसा हो कि जो सिर्फ उसके लिए हो, जो उसका साथी हो, जो उसके दर्दों से वाकिफ हो, कभी अगर मुश्किल या परेशानी या मुसीबत आए तो वो उसका हमदर्द हो, उसके साथ हमदर्दी का मुजाहरा करे। लोगों के इस हुजूम में कोई एक ऐसा हो कि जो उसका हेल्पर हो, जो उसका साथी हो। और तीसरी बात ये कि उसको अपनी पहचान करवाने के लिए इस दुनिया में खानदान की जरूरत होती है, सही। और अगर खुदा देखा जाए, खुदा ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि वमिन आयात ही अन खलका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, कि खुदा ताला ने की निशानियों में से ये निशानियां हैं कि खुदा ताला ने तुम्हारी ही जिन्स में से खल्क किया है क्या तुम्हारे जैसा एक जोड़ा, एक अज़वाजन यानी तुम्हारे जैसा खल्क किया है ताकि तुम उसके साथ मिलाप कर सको। किस लिए? लितस्कुनु, ताकि तुम्हें सुकून मिल सके, इलाहा ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। वजाला बैनकुम मवद्दता व रहमा, और तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत और रहमत का जज्बात पैदा किए हैं। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून, और ये निशानियां हैं उस ग्रोह के लिए, उन लोगों के लिए कि जो तफक्कुर करते हैं। आपने नोट किया होगा कि पहली आयत में भी ये तज़क्करून की बात आई है, दूसरे में तफक्करून की बात आई है। तो खुदा ताला ने खुद दावत दी है कि मेरे हर जो इस जहान पे निगाह करते हैं, हर अमर पर फिक्र करो,
फिक्र करें, तज़क्कुर
करें, बार बार उसका जिक्र करें, तज़क्कुर करें, फिक्र करें, सोचें कि इसमें खुदा ताला की क्या हिकमत है। कोई भी चीज खुदा की हिकमत से खाली नहीं है, हर चीज में खुदा ताला की हिकमत है। अब आप देखें कि खुदा ताला ने इस रिश्ते के जरिए इंसानों के दरमियान और हर चीज के दरमियान एक मोहब्बत और मवद्दत का रिश्ता कायम किया है, मोहब्बत कायम की है। अब सबसे बड़ा हदफ यही है इस जवाज का कि खुदा ताला ने जब इस कायनात में मोहब्बत को बढ़ाया जाए, मवद्दत को बढ़ाया जाए, और इंसान की अव्वली जरूरियात में से है कि मवद्दत इख्तियार की जाए और मोहब्बत इख्तियार की जाए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी अहमियत के लिहाज से कि इंसान अपने मकसद हयात के नजदीक तर हो जाता है इस ज़वाज के जरिए। अब मकसद हयात उसका ये है कि खुदा का तकर्रुब हासिल कर सके। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ से है और उसी की तरफ पलट के जाना है। अब उसकी तरफ पलट के कैसे जाएगा? ऐसे ही कि जैसे यहाँ इस दुनिया में आया है, खाया पिया सोया ऐश की और उसके बाद मौत आई और चले गए, नहीं। उसकी तरफ पलटने के लिए खुद खुदा ताला ने फरमाया कि वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने नहीं खल्क किया जिन्नों और इंसानों को सिवाय इसके कि वो इबादत गुजार हो जाएं या अब्द बन जाएं।
जी,
अब अब्द बनने के लिए देखा जाए तो क्या है, खुदा ताला ने इंसान को इस जहान में अपना खलीफा बना के भेजा। आप देखें, अगर कोई इंसान किसी को अपनी जगह पे जानशीन या खलीफा बनाता है तो कुछ देख के बनाता है, सही। ये देखता है कि आया जो खसूसियात मुझ में हैं, आया इसमें भी हैं, आया मेरे बाद जानशीन बनने का ये हकदार है या नहीं है, सही। अब उन खसूसियात को देख कर, जांच कर, वो इंसान उसको अपना खलीफा बनाता है, अपना जानशीन बनाता है। नुक्ते मुश्तरक होता है, ये कहें इंसान को खुदा ताला ने क्या इस जहान में अपना खलीफा बना के भेजा है। हतमन कोई ना कोई नुक्ता मुश्तरक है, कोई ना कोई ऐसी बात है। वो खुदा जो हमारा खालिक है, वो खुदा जो हमारा मालिक और रब है, वो उसने हतमन हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी सलाहियतें डाली हैं कि जिनको हम जाहिर करने के बाद एक नुक्ता मुश्तरिक पैदा कर सकते हैं कि जो तकर्रुब खुदा का बायस बने। अब आप सोचेंगे कि यहाँ इस ज़वाज में ये कहाँ से ये बहस निकल आई। बहुत अहम है इस ज़वाज में ये बहस, इसलिए अहम है कि खुद रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि आधा दीन उसका कामिल हो जाता है इस ज़वाज से, सही, वो उसको मिल जाता है, उसने आधा दीन पा लिया अपना। अब बाकी उसने तकवा इलाही, तकवा इलाही अमल से हासिल होता है। अब आप देखें कि खुदा ताला ने इंसान के अंदर इतनी सलाहियतें रखी हैं, यही इसी आयत की रोशनी में देखते हैं कि मवद्दत और रहमत की जो सलाहियत है वो खुदा ताला ने रखी है। मवद्दत खुदा ताला के इस्म वदूद से निकला है। अब आप देखें नुक्ता मुश्तरक आ रहा है ना
जी, बेशक
सही है ना कि खुदा ताला की जात, खुदा ताला की जात जो है वो इस इंसान एक लोहे की मानद है और खुदा ताला की जात मकनातीस की मानद है। लोहा भी अर्जिश, वो मकनातीस जब ये नुक्ता मुश्तरक पैदा होता है तो वो खुद ब खुद खींच जाता है ऊपर की तरफ। ये एक नाम है। अब आप देखें इस दवाज के बाद बेसिक जो चीज होती है वो नस्ल की बका है
जी।
सही, खुदा ताला ने फरमाया कि नस्ल की बका इस दवाज से है। अब नस्ल की बका कैसे होती है, जब होगी कि जब ये इंसान, ये मर्द और ये औरत या ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों अपने तौर पर खुदा ताला के अब्द होंगे और वो दोनों मिलके इस तरकीब से एक नए अब्द के लाने का बायस बनेंगे। और नया अब्द कैसे होगा, जब ये दोनों कामिल होंगे तो जो तीसरा अब्द खुदा इस दुनिया में लाने का वास्ता बन रहे हैं ये दोनों,
वो खुद भी कामिल,
वो खुद भी कामिल होगा
जी,
सही, और उसमें भी वो खसूसियात मौजूद होंगी। फिर जब तरबियत की बात आती है इस दवाज के बाद, आप देखें कि मर्द इन अहमियत और उसूलों के रोशनी में और अपने फराइज की सही तरीके से अदायगी करता है, उससे ये होता है कि जो मर्द है वो अपने फराइज को इबादत के तौर पे अंजाम देता है कि मैं इस दुनिया में खल्क हुआ हूँ अब्द होने के लिए और मेरा हर काम इबादत होना चाहिए, इबादत यानी खुदा के लिए, हर चीज में नियत खुदा की खुशनुदी है। अब अगर वो घर से बाहर निकलता है और अपने खानदान के लिए रोजी और रिस्क की तलाश में निकलता है तो खुदा को पेशे नजर रखता है
जी, बेशक, यानी वो खुद वो काम उसका इबादत में
शुमार हो जाता है, तो वो अपने खानदान की हिफाजत करता है तो खुदा की खातिर करता है, बस वो अपने घर को सही तौर पर चलाने के लिए तदबीर इख्तियार करता है। अब आप देखें कि खुदा का नाम मुदब्बिर है और वो इस खुदा के इस नाम को इस दुनिया में जलवागर कर रहा होता है। खुदा
यानी शादी के बाद इंसान जो है एक तरह के कह रहे कि मजहर सिफात खुदा बन जाता,
खुदा बन जाता है, बिल्कुल जाहिर करने वाला है, इजहार हमने इसकी तारीफ में बयान किया था, असर लेके और उस असर को जाहिर करने वाला
जी। मौदा में बुलंद अकबर साहबा, जैसे कि आपने अभी इज़्ज़वाज की इतनी अहमियत बयान की है और किस कदर जो है खुदा ने उसके अहदाफ और उसकी अहमियत को इस्लाम में बयान किया गया है, तो लेकिन हम आज प्रैक्टिकली लाइफ में जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि आज जो नौजवान है वो इज़्ज़वाज से फरार करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उसके बरक्स हम देखें अगर किताबों में रिवायात में इस कदर अहादीस मिलती हैं हमें इज़्ज़वाज की अहमियत के बारे में, तो आप इसको मुख्तसर हमारे नाज़रीन के सामने बयान करें कि क्यों आज हमारे जवान जो है वो इज़्ज़वाज से फरार करते हुए नजर आते हैं।
जी वाकई में आप सही कह रही हैं, आजकल के दौर में एक ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आजकल के जो जवान हैं वो इज़्ज़वाज के नाम से घबराते हैं
जी।
इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, देखा जाए तो दीन इस्लाम एक कामिल इस्लाम है, उसमें हर चीज के लिए उसूल और कवायद मौजूद
हैं। साहब अभी यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इस जवाब को जो है आप हमारे नाज़रीन के सामने बयान कीजिएगा। नाज़रीन हमारी इस खूबसूरत जो गुफ्तगू का जो हमारी जो खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी वो अभी खत्म नहीं हुई है, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
فذنبي عظيم لتصفح إلهي فأنت العليم أناجيك ربي فذنبي عظيم لتصفح إلهي فأنت العليم إلهي جنيت على نفسها تسامحني في دنو الأجل فأنت الحكيم المعز المذل وأنت الذي تشفي كل سقيم إلهي لجأت إليك كثير الجنان.
بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر آپ کو گھرانہ میں خوش آمدید کہتی ہوں. تو محترمہ بلند اقبال صاحبہ, میں نے جب بھی آپ کے سامنے سوال کیا کہ کیوں جوان آج جو ہے وہ ہم ازدواج سے فرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جبکہ ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ازدواج کے متعلق جو ہے پیغمبر نے بے پناہ مثلا اس کی اہمیت بیان کی ہے, اور روایتوں اور حدیثوں میں بھی اس کی جو ہے بے پناہ اہمیت بیان کی گئی ہے.
اس کی میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجوہات میں جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام سے دوری. میں نے ابھی عرض کیا کہ دین اسلام ایک کامل دین ہے اور اس میں زندگی کے ہر موضوع ہر پہلو کے بارے میں, یعنی کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا پہلو بھی لیں گے نا اس کے بارے میں بھی احکام موجود ہیں. اور یہ کہ دین اسلام بہت آسان دین ہے, زندگی کو آسان کرنے کے لیے دین آیا ہے, نہ یہ کہ زندگی کو مشکل کرنے کے لیے. تو اگر دیکھا جائے کہ جوان جتنے بھی ہیں وہ اس نام سے شادی کے نام سے ہی دور بھاگنا شروع کر دیا ہے آج کل کے دور میں, وہ اس لیے کہ بہت سے جوان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے شادی کر لی تو یہ شادی کرنا یہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن جائے گا, اور یہ کہ یہ ان کی ترقی کی راہ میں اور ان کی آزادی کے لیے یہ رکاوٹیں ہیں اور یہ وہ چاہتے نہیں ہیں, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو غلط رسومات ہیں جو آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں, مثلاً کیا, اب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے ایک خاندان دوسرے خاندان کی طرف جاتا ہے تو ان کی ڈیمانڈ ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے. مثلاً لڑکی والے چاہتے ہیں کہ لڑکے کے پاس ایک اچھی جاب ہو اور پیسے کی بھرمار ہو, گھر اپنا ہو, گاڑی ہو, اور تمام سہولیات موجود ہونی چاہیے. اور یہ کہ ادھر سے جب لڑکے والے لڑکی والوں سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہو, سلم سمارٹ ہو, پڑھی لکھی ہو, یہ نہیں دیکھا جاتا,
خانہ داری میں
ماہر ہو. اور آج کل تو وہ بھی شاید اتنا نہ دیکھا جائے, کیونکہ آپ دیکھیں ٹی وی پہ اتنے سارے چینل آ گئے ہیں کوکنگ کے کہ وہ ٹی وی چلائے اور کوکنگ کر سکتی ہے. اصل میں جو دین میں ہمیں حکم حاصل ہے, دین میں جو معیار ہے ازدواج کا یا رشتہ جوڑنے کا, وہ یہ نہیں ہے.
یعنی لوگوں نے معیار غلط اپنا لیا,
بہت غلط معیار اپنا لیا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل, کتنے لڑکے ہیں کہ جو شادی سے گھبراتے ہیں اور کتنی لڑکیاں ہیں جو بغیر ازدواج کے بیٹھی ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو معاشرے میں جو مشکلات ہو رہی ہیں اس کی ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے, اتنا مشکل ہے اس دنیا میں اس معاشرے میں. صرف وجہ صرف یہی ہے کہ دینی احکام اور دینی اصولوں سے ہم دور ہو رہے ہیں, دین اسلام کی اصل روح کو
اسلام نے ہمیں جو اصل معیار بتایا ہے وہ تقویٰ ہے.
تقویٰ
کہ اگر تمہارے پاس جو ہے کوئی متدین اور دیندار شخص مثلا رشتہ لے کر آئے تو تم اسے قبول کر لو, یہ نہ دیکھو کہ اسے کے پاس دولت ہے یا گھر ہے یا پیسہ ہے, یہ سب چیز نہیں دیکھو. اصل جو معیار ہے وہ تقویٰ الہی ہے,
تقویٰ الہی ہے, دینداری ہے, عفت ہے, حیا ہے, پاک دامنی ہے, نہ صرف خواتین میں بلکہ مردوں میں بھی یہ سب چیز ہے. کیوں؟ اسی لیے تو ازدواج کو نصف دین کہا گیا ہے, کہ جب ازدواج کے رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں تو وہ تمام معصیت سے دور ہو جاتے ہیں, ان کا دل سکون میں آ جاتا ہے, مردوں کی نگاہ پاک ہو جاتی ہے, خواتین کو ایک راہ مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس لیے کہ جب ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں تو وہ خدا کے ذکر میں اور زیادہ آگے جاتے ہیں. اور یہ ازدواج کیا ہے؟ ازدواج حکم خدا ہے, حکم الہی ہے, تو ان سے دلوں کو سکون ملتا ہے, کو
اور ایک اور جو غلط معیار ہے وہ یہ کہ مثلا آج کل جو جوان ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم شادی کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے اوپر جو ہے وہ ذمہ داریاں آ جائیں گی, خرچہ آ جائے گا, یعنی ہم شاید نہ
ہوتے. غلط ہے, دین اسلام میں, دین اسلام میں فرمایا گیا ہے کہ ہر جو ذی شعور اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے
اس کا رزق خود خدا دینے والا ہے,
خدا کا وعدہ ہے اس کا رزق دینے. یہ تو ہماری خواہشات, اضافی خواہشات ہیں جو ہمیں پریشانی میں ڈال دیتی ہیں, پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہیں. دوسرا یہ کہ چلیں رشتہ ہو گیا جیسے تیسے کر کے, اب اس کے بعد جب شادی کا موقع آتا ہے, نہیں جی, اب ایک اعلیٰ ہوٹل ہونا چاہیے, اس میں کھانا ہونا چاہیے اعلیٰ ترین, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے اس طرح شادی کی, تو ہمارے خاندان میں اگر جو شادی ہو رہی ہے تو اس میں بھی وہ تمام
یعنی دیکھا دیکھی, یعنی دیکھا دیکھی کا جو معیار ہے
وہ دیکھا دیکھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب جو نوجوان نسل ہے, یہاں نوجوان کو چھوڑیں, حتیٰ کہ ماں باپ بھی گھبراتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہو پاتے کہ وہ اپنے بچے کو یا اپنی بچی کی اس طریقے سے شادی کر پائیں کہ جیسا کہ آج کل کا ماحول چل رہا ہے. تو یہ سب دین سے دوری کی وجہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جبکہ دین اسلام میں ہر طرح کا حکم موجود ہے, دین اسلام میں رشتہ ازدواج کو برقرار رکھنے کے لیے آسانی کا حکم دیا گیا ہے. ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ازدواج کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اس کے پاس ایک انگوٹھی تھی, رسول خدا نے فرمایا کہ اسی انگوٹھی کو حق مہر کے طور پر رکھ دو.
جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج مہریہ اتنا زیادہ جو ہے وہ کر دیا گیا, اتنا زیادہ کہ آج جوان محل سے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ شادی سے فرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ
یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری غلط رسومات ہیں اور ہمارے جو ہے
اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم اگر شادی کرنا چاہیں تو انسان بہت ہی سادے طریقے سے اور بہت ہی کم پیسے میں اگر چاہے تو انسان بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے.
معیار صرف دینداری ہے.
بے شک
معمولاً جو ہے ہم کف کہا جاتا ہے کہ, اور یہاں پہ آج کل ہم کف کسے کہا جاتا ہے؟ کف سے مراد یعنی ایک جیسا ہونا, صحیح. لیکن اس ایک جیسے ہونے کو ہم آج کل اور مطلب مادیات میں لیتے ہیں. مثلاً کیا؟ مثلاً اگر وہ پیسے والے ہیں, ملیارڈ یعنی لکھ پتی ہیں, تو ادھر بھی یہی کچھ ہونا چاہیے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم کفیت کا جو معیار ہے, ہم کف ہونے کا جو معیار ہے, ایک جیسا ہونے کا جو معیار ہے, وہ دینداری ہے. آپ دیکھیں اگر یہ دینداری اور معنویات جب بڑھ جاتے ہیں, اگر ایک فیملی پیسے کے لحاظ سے زیادہ اور ایک فیملی کم ہے لیکن ان میں معنویات اگر ہیں, تو جو یہ مادیات ہیں یہ کم رنگ ہو جاتے ہیں, سست پڑ جاتے ہیں. اس سے یہ کہ معنویات بڑھ جاتے ہیں جس سے محبت اور رحمت کا جو جذبہ ہے وہ زیادہ چڑھتا ہے. اس سے یہ کہ جو عورت ہے وہ خدا کی خاطر مربی بن جاتی ہے.
بہت بہت شکریہ محترمہ بلند اقبال صاحبہ, بہت ہی اچھے اور خوبصورت نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا. امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو پسند آئے ہوں گے. ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. ناظرین امید کرتی ہوں ہمارا یہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اس پروگرام کے متعلق اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو ہمیں ضرور ارسال کریں. اگلے پروگرام تک آپ تمام ناظرین کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں. اللہ حافظ.